آپ یہیں پہ ہوں گنا چاہیے انشاء اللہ تعالی. جزاک اللہ خیرن کثیرا.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں آپ لوگ؟ یہ بتائیے کہ اسلام کی تین بنیادیں کتنی پختہ ہو گئی ہیں؟ صرف سن رہے ہیں یا بیچ میں اندر بھی آ رہا کچھ کوشش؟ کوئی ایک جملہ بولیں کہ آپ نے عقائد اور معاملات اور عبادات، یعنی عقائد عبادات اور معاملات میں آپ نے جو کچھ ابھی تک پڑھا ہے یا سیکھا ہے، عملی زندگی میں آپ کے اس کا کیا ہوا؟ کوئی ایک بندہ شیئر کر دے آپ میں سے، ایک بندی. جی آپ سمینا. صحیح، سیلف انالیسس اور اپنی کمیوں کو پورا کرنا. جی شاہین آپ. جی آپ بھی، یہ آپ کے لیے بھی ہے. صبر تو آج سیکھیں گے انشاء اللہ تعالیٰ. جی ساری مصیبت ہی نفس کی ہے، لڑائیاں جھگڑے، میں چھوٹا بڑا، یہ سب چل ہی نفس کے ساتھ رہے نا. اصل بات یہ ہے کہ ہم لوگ اس چیز کو اپنا بت توڑ نہیں پاتے تو باہر کے بتوں کی بات کرتے ہیں نا. تو انشاءاللہ تعالی آج ہم اخلاق پہ، میں اس کو تھوڑا سا سم اپ کرتی ہوں آپ کے ساتھ. نوٹس لیجئے گا، شیٹ آپ کو مل گئی ہیں آج کی، اور یہ مین شیٹ بھی ویک فور کی آپ کے سامنے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم اس کو شروع کرتے ہیں. بالکل ایسے مجھے خود فیلنگ آنے لگ جاتی ہیں جب آپ بالکل ایبزارپشن کے لیے تیار ہوتے ہیں. پتہ نہیں کیوں اسٹوڈنٹس کے چہروں پہ لکھا ہوتا ہے کہ ان کا ذہن کیا سوچ رہا ہے. تو ذہنی طور پہ اپنے آپ کو بالکل اس طرح رکھا کریں اس وقت کہ آپ لینے والے ہیں، اور لینے کے لیے 100% ڈیووشن چاہیے ہمیں. چیئر خالی ہیں، اس کو فل کیجئے پلیز. ایک آگے آ جائے آپ میں سے جو بھی یونیفارم میں، آپ آ جائیے ان کے ساتھ آگے. اب جو آئے گا وہ پیچھے بیٹھے گا، اور جو گرے اسکارف میں کوشش کریں آگے سے آگے بیٹھتے رہیں کیونکہ وہ ایک سمیٹریکل لگتا ہے. کبھی آپ نے ٹیولپ گارڈن دیکھا ہے؟ بیلجیم گئے، وہاں ٹیولپ گارڈنز ہیں، دنیا کے سب سے زیادہ گارڈنز وہاں ہیں، اور لیکن ہوتے بہت تھوڑا وقت ہے نا. تو آپ دیکھیں کہ پوری فیلڈز ہیں، یلو فیلڈ پوری، ایک یلو میں اگر پنک ہوگا تو اچھا نہیں لگے گا نا. تو آپ سب بھی سب ایسے بیٹھے ہوں گے کہ جس سے دیکھ کر واقعی فیل ہوتا ہے کہ آپ بھی ٹیولپ گارڈن ہیں. ہے الحمدللہ. چلیے سیل فون بند ہے، اپنے ٹیبلز چیک کریں کہ کیا آپ کے ٹیبل آپ کا ذہن کا عکس ہیں اس وقت. ماشاءاللہ پانی کتنی بڑی بڑی بوتلیں، ماشاءاللہ. ابھی میں ایک ویڈیو چھوٹی سی دیکھ کر آئی ہوں، ماؤنٹ ایوریسٹ پہ لوگ کلائم کر رہے ہیں. میں نے سر سے کہا مجھے بھیجیں، ان کو بھی دکھائیں گے. اٹس آلموسٹ 9 kilometers ٹال، دا ٹالیسٹ یعنی کہہ لیں ہل ان پاکستان، اور لوگ اس کو کانکر کرتے ہیں. اوپر جب جاتے ہیں تو اپنے ساتھ آکسیجن ماسک بھی ہے، فلی ڈریس جو ہے وہ ایسا ہے کہ گر بھی جائیں تو چوٹ نہ لگے پلاسٹک میں، اور سنو ہے، ہائکنگ کر رہے ہیں اوپر سے روپ کے ساتھ، ہانپ رہے ہیں، ایسے لگ رہا ہے کہ اس کا سانس اکھڑ جائے گا. اور جب بس ٹاپ پہ پہنچنا ہے تو اپنا جھنڈا لگانا ہے، ہا ہا کرنا ہے کہ میں بھی ان میں سے آ گیا جس نے ماؤنٹ ایوریسٹ سر کی. اور میں نے سوال کیا کہ یہ یہاں پہنچنے میں ٹائم کتنا لگتا ہے آپ کو، کین یو امیجن؟ 2 months. 2 months. It take them 2 months to reach to the Mount Everest. وہاں جا کر کیا ملے گا؟ ایک نام کہ یہ ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کرنے والے ہیں. تو مجھے قرآن کی آیتیں یاد آ رہی تھی کہ فلق تحمل عقبہ، تمہیں کیا پتہ وہ گھاٹی کیا ہے، فک رقبہ، एक गुलाम को आज़ाद कराना, तो वो कोशिशें जिसके पास सिर्फ दुनिया की अप्रिसिएशन है थोड़ी सी, उनकी एफर्ट और उनका सांस फूलना और उनका भागना देखें, और हमें जिसमें एक एक कदम पे कितना अजर और कितना फ़ायदा है, उसके लिए हमारा आहिस्ता आहिस्ता रिंगना देखे कोई। तो अल्लाह से दुआ है कि हमें डिवोशन के साथ इस काम को करने वाला बना दे। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु, फाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। अभी भी विस्पर्स हैं क्लास में। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु कौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। एम्बेसडर ऑफ़ इस्लाम, अल्लाह ताला की तौफीक से हम फोर्थ वीक का आगाज़ करते हैं। ज़रा सा इस लेस को दोहरा लीजिए जो आपके सामने है। इस्लाम के दो हिस्से, हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद। हकूकुल्लाह के फिर दो हिस्से, दो बुनियादें, अकायद और इबादात। अकायद में सबसे ऊपर ईमान बिल बिल्लाह, जो जान है सारे ईमान के बाकी जुज़ियात की। फिर ईमान बिल किताब, ईमान बिल रसूल, ईमान बिल तकदीर, ईमान बिल आखिरा, ईमान बिल मलाइका। इन सब के बारे में हम जानते हैं तो दिल में अल्लाह की मोहब्बत की, तवक्कुल की, शुक्र की और अल्लाह पे राज़ी रहने की जड़ें फूटती हैं। वो जड़ें जब ऊपर आती हैं तो एक बारीक नाजुक से तने की सूरत में, जिसको हम इबादात कहते हैं, जो वक्त के साथ पुख्ता होता है। और इबादात की किस्में, नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज और ज़कात। और इसमें हज, यानी ये सीक्वेंस है, नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज। इबादात पुख्ता होती हैं इंसान की, एक तने की तरह मोटा ग्रो होता है। यहाँ पे अगर कोई दरख्त को ऊपर से काट दे, माई क्वेश्चन, ये मैंने आपको पहले नहीं दिया, नोट करें। इफ़ समवन सेज व्हाट इज़ दिस, तसव्वुर की आँख से एक मिसाल लीजिए, आप अपनी शीट के ऊपर भी लिख सकते हैं एनी वेयर यू वॉन्ट। अब देखिए कि दरख्त क्या है, तना, नीचे जड़ है, ऊपर उसके ब्रांचेस हैं, फिर पत्ते हैं और उसके बाद फ्रूट्स लटक रहे हैं। इफ़ समवन कम्स और आकर बोलता है कि फ्रूट तो खाता कोई नहीं, नीचे गिर जाता है, बर्ड्स खाते हैं, गंद होता है, कचरा होता है, लेट मी, आई विल टेक आउट ऑल द फ्रूट, और वो सारा फ्रूट पिक कर जाता है। और एक वक्त आता है कि सॉरी कि दरख्त का फल उतर जाता है। अब कोई पूछे किसी को, राह चाहते को, बताओ ये क्या है, वो क्या कहेगा? स्टिल इट्स अ ट्री, ठीक है ना? ठीक है उसकी मोर डिस्क्रिप्शन, ट्री विदाउट फ्लावर फ्रूट वट एवर, बट इट्स ट्री। लिख लें आप फर्स्ट स्टेप। इफ समवन पिक्स अप ऑल द फ्रूट ऑफ द ट्री, स्टिल इट रिमेन्स ट्री। आप बनाए इस पर एक बड़ी खूबसूरत एक्टिविटी बन सकती है। सेकेंड पर्सन विल कम एंड टेक अ लुक ऑन द सेम ट्री, और वो सोचता है कि इट्स अ ट्री बट इट हैज़ नो फ्रूट्स। और फिर वो क्या देखता है, नीचे बहुत सारे पत्ते गिरे हुए हैं एंड इट दीज ऑल लीव्स आर मेकिंग मेस, बहुत ही मेस हो रहा है। अब जब ये मेस हो रहा है तो वो कहता है कि वट इज़ द पर्पज़ ऑफ दीज लीव्स, पत्तों का तो फ़ायदा कोई नहीं, फ्रूट इसमें है कोई नहीं, करें क्या? लेट मी टेक आउट ऑल द लीव्स। वो उस दरख्त के सारे पत्ते उतार देता है। इफ़ नाउ, नाउ इफ़ यू विल आस्क, अब अगर आप किसी से भी पूछें बताओ ये क्या है, वो कहेगा ऑफ कोर्स इट्स अ ट्री, ये दरख्त है बट विदाउट फ्रूट्स एंड विदाउट लीव्स। ठीक है, ये भी बात हो गई, बट स्टिल इट्स ट्री, वो भी चला गया। एक थर्ड मैन विल कम, एक तीसरा आदमी आता है, वो कहता है कि ये दरख्त ऐसा है कि जिस पे ना फ्रूट है ना इसके पत्ते हैं, हाँ ब्रांचेस फैली हुई हैं चारों तरफ जिनका कोई फ़ायदा नहीं है, और ये सारी ब्रांचेस जो हैं ये इधर उधर जगह ले रही हैं, कोई फ़ायदे नहीं है, किसी के आते जाते कपड़ों में घुस रही हैं, कुछ भी कर करा रही हैं, तो लेट मी टेक आउट ऑल देम। वो एक्स लेके आता है, कुल्हाड़ी, और वो ब्रांचेस सारी इधर उधर से झाड़ना शुरू कर देता है। तसव्वुर में लाइए कि एक दरख्त है, जब ब्रांचेस सारी ऊपर से उतार के सिर्फ नीचे का एक स्टेम छोड़ दे, नौ दिस इज़ द पॉइंट वेयर वी आर गोइंग टू स्टैंड आवर सेल्फ। अब जब वो उस पूरे तसव्वुर में लेके बस एक स्टैम्प खड़ा है, नथिंग इज़ देयर हेयर, कुछ भी नहीं, कट 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 कट। अब कोई आप उसको पूछे कि बताओ व्हाट इज़ दिस, हाउ मैनी पीपल विल सी दिस एंड से दिस इज़ अ ट्री? नो वन विल सी एंड से दिस इज़ ट्री। कोई भी नहीं उसको दरकेगा, वो कहेंगे दिस इज़ अ पिलर, दिस इज़ अ पिलर। वजह? क्योंकि सीधा डंडा खड़ा है, इज़ अ पोल, डंडा। कोई कहेगा हो सकता है कि ये डंडा इसलिए इधर खड़ा है कि इस पे कोई टेलीफोन की वायर्स लगनी है, माइट बी इट विल बी या इलेक्ट्रिक पोल। कोई इसको दरख्त नहीं कहेगा। हाँ, झाड़ है, जैसे आजकल देखिए हमारी राइट साइड पे देखें अगर, तो वह ये दरख्त है, ये आपके बिल्कुल साथ शुरू में देखिए, इस पहले पे एक भी पत्ता नहीं है, इसके ऊपर एक भी फ्रूट नहीं है, बट स्टिल इज़ अ ट्री। थोड़ा सा पीछे देखिए वो ग्रीन एवरग्रीन दरख्त, उस पे फ्रूट नहीं लेकिन बाकी सब कुछ, इट्स ट्री। लेकिन अगर इसके पीछे वो मुझे दिख रहा है, आपको नहीं दिखेगा, वो सामने जो एक बिल्डिंग है ना, उसके सामने एक पोल खड़ा है, वो ट्री नहीं है। हालांकि अब लुक देखिए, अभी तक आप क्या ले चुके, इवन नीचे रूट भी है, इवन स्टेम भी है, बट इट्स नॉट अ ट्री। और ये दो चीज़ें मिलके हो गया हकुकुल्ला पूरा, समझ आ रहा है? अकीदा भी अंदर छुपा हुआ है, इबादत का स्टैंड भी है, बट इट्स नॉट अ ट्री। क्या पता चला कि इवन हकुकुल्ला पूरे करने के बावजूद अगर हमारे मामलात यानी दूसरी तरफ हकूक़ुल इबाद में नहीं ढलते, हम कभी भी इस्लाम का दरख्त नहीं बनेंगे। दिस इज़ पार्शल इस्लाम। इफ़ वी वॉन्ट टू अमल, अगर हम अमल करना चाहते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्खुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, तो हमें हकूक़ुल्लाह के बाद हकूक़ुल इबाद पूरे करने पड़ेंगे। आज यही जुल्म इस इस्लाम के साथ हम में से बहुत सारे मुस्लिम्स ने किया। आज इस्लाम को गैर मुस्लिमों ने इतना नुकसान नहीं दिया जितना हम मुस्लिम्स ने दिया। कोई आया तो फ्रूट्स काट गया, दूसरा आया तो पत्ते उतार गया, अखलाक निकल गया उससे, और तीसरा आया तो उसने मामलात की टहनियाँ भी उतार दी और इस्लाम सिर्फ फोर पिलर्स ऑफ इस्लाम के नाम पे पेश कर दिया। और अगर कोई आकर कल इस तने को भी काट दे तो फिर तो वजूद भी ख़त्म दिल में। फिर वो ये वो लोग हैं जो कहते हैं आपको क्या पता मैं अंदर से कितना नेक हूँ। हाँ, ये लग पता मैं नमाज नहीं पढ़ता। सम सिस्टर केम टू मी एंड कहने लगी कि दिस एंड दैट, मैं अपने बेटे को कहती हूँ नमाज़ पढ़ो, तो वो कहता है अम्मी मैं नमाज़ नहीं भी पढ़ता, अगर तो मैं कितना सोशल वर्क करता हूँ। मैंने कहा क्या करता है? कहती पुलिस में है, और पुलिस वाले तो बहुत सारा दिन इधर उधर काम करते हैं। तो कहता है देखे ना कि मैं मुजरिमों को पकड़ता हूँ, गोलियाँ भी चलती हैं, तो क्या मैं ये अच्छा काम नहीं कर का रहा, तो क्या अल्लाह मुझसे खुश नहीं होगा? तो मैंने कहा नहीं होगा, आप अल्लाह को पहचान नहीं, आप नमाज़ नहीं पढ़ रहे, तो फिर आपको ये सोशल वर्क कैसे फ़ायदा देगा? ये है अब्दुल्ला बिन जुदान का नाम, अल्लाह के नबी और आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के बीच में एक कॉन्वर्सेशन है हदीस में, कि क्या उसको फ़ायदा देगा? हातिम ताई का नाम ले लीजिए, उसकी देख कभी उतरती नहीं थी। कहा उसको फ़ायदा होगा? कैसे? कहा आयशा कैसे होगा, उसने तो एक बार नहीं कहा कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मेरे गुनाहों को बख्श दे, यानी उसने अल्लाह को अल्लाह माना ही नहीं, उससे गुनाहों की माफ़ी नहीं मांगी। तो याद रखिए ये सफ़ा आपकी मेरी अगर नामे अमाल में ढल गया, पूरा होगा, तो इंशाल्लाह फिर किसी न किसी सूरत में हम अल्लाह के यहाँ सुरखरू होंगे। ना सिर्फ आप अल्लाह के हुक्म देकर बचेंगे और ना सिर्फ बंदों के। आज लोगों ने दो चीज़ें की, कुछ अकीदे की बुनियाद पे कहते हैं हमें सब कुछ पता है, हम नमाज ना भी पढ़ें मेरी नमाजें अंदर हैं, हमें नमाज की ज़रूरत नहीं। कोई कहता है पाँच की ज़रूरत नहीं, तीन ही बड़ी हैं। कोई कहता है सिर्फ दो ही बहुत है। राइट? आप मुस्लिम नहीं हैं जब तक आप ये पाँच चारों चीज़ें, इससे आपको अब इस्लाम ए टू जी से मुस्लिम स्ट्रक्चर भी समझ आ जाना चाहिए। कहीं भी नमाजें अगर पाँच से कम या ज़्यादा हो गई, दैट इज़ आउट ऑफ इस्लाम। आप जो मर्ज़ी कहते रहे, ये कैसे होगा? ज़कात 2.5 ही है, बट अगर कोई 2.5 को 10.5 कह दे, 25.5 कह दे, इट्स नॉट इस्लाम जी। और अगर कोई कहता है रोज़े, बस रोज़ा तो बड़ा मुश्किल है, वो तो आप आएँ और अपने बुजुर्ग का दीदार करें, दिस इज़ रोज़ा। और हज के लिए वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है? आप आइए और बस फलांची जगह के ऊपर बैठिए और उधर कुछ थोड़ी देर इबादत कीजिए, हज योगा। इस्लाम एक पूरे स्ट्रक्चर का नाम है, अमेरिकन लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है। आपको इटी बिची मिलती है ना, अगर स्ट्रीट लाइट क्रॉस करते हुए ये हो गया, अगर रोड क्रॉस की, अगर रेड लाइट पे ना रुके, सीट बेल्ट ना पहनी, हर एक के छोटे छोटे है ना कंडीशंस, तो इस्लाम के तो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकेटेड है, ठीक है। तो जब फिर हमें ये बात समझ आती है तो हम फिर इस्लाम के सेकंड हाफ, अगर मैं इस पेज को यूं कर दूं सिर्फ आपको दिखाने के लिए, और जो बाहर से इस बात में सुनेंगे उनको मेरी आवाज़ों से समझ आएगा, लुक, अगर मैं आपकी इस शीट को हाफ कर दूँ इधर, और समझ आ रहा है, या आप हकूकुल्ला ले लीजिए या आप हकूकुल इबाद ले लें, बात बनेगी। दिस इज़ नॉट कम्प्लीट इस्लाम। और फिर अगर मैं आपसे यूं कहूं कि आप ऐसा कीजिए, इसको निकाल दें आप सेकंड, इसके फिर थ्री पे पार्ट कीजिए, सिर्फ ये ले लीजिए, बात बनेगी, नहीं बनेगी। और अगर आप इसकी थ्री फोल्ड बुकलेट बना दीजिए, कुछ का इस्लाम ये है सिर्फ, आज जो पढ़ने लगे हैं, आज हम ये पढ़ने लगे हैं, इस हकूकुल इबाद के दो हिस्सों में से एक हिस्सा क्या था, मुआमलात, गुजर गया, आदाब सीख लिए, हकूकुल फ़राइज़ सीख लिए, और फिर उसके चार पार्ट्स हमने देखे, मुआमलात बिन नफ्स, ख़ानदानी मुआमलात, माशी मुआमलात, माशरती मुआमलात, ठीक है। अब जो लास्ट पोर्शन हम पढ़ेंगे ये है अख्लाकियात का, और अख्लाक क्या, अभी बात करते हैं, सिर्फ इस शीट को थोड़ा समझ जाते हैं, अख्लाक हसना और अख्लाक सजिया, यानी शीट आपकी कैसे पूरी होगी कि सबसे पहले आपने अल्लाह के हक देने की कोशिश की, ठीक है, अकायद और इबादत की सूरत में। अब दूसरी सूरत यह है कि अब हर तना इस चीज़ का तकाजा करता है कि आप उसको ब्रांचेस में ढलने दें, बच्चों की ग्रोथ हो रही है ना, जिस्मानी तौर पे दांत बाद में उगते हैं, पहले नहीं होते, बाल काट जाएं फिर भी उग जाते हैं, इस तरह आप कह लें कि इस्लाम की ग्रोथ का एक नेचुरल फिनोमिनन है कि ब्रांचेस बनने दीजिए। आपका ताल्लुक बिल्ला, ताल्लुक बिन नास में ढलता है तो पता चलता है कि यू आर ग्रोइंग। अगर आप सिर्फ नमाज़ें पढ़ पढ़ के उसी में नेकियों के पहाड़ बनते जाएं, फ़र्ज़ के बाद सुन्नत, सुन्नत के बाद नफिल, फिर मुजाहदे मुजाकरे, 500 दानों की तस्बियां लेकर घर में बैठे रहें, तज़किया की मंजिलें तय करते रहें, सलूक के मराहिल तय करते रहें, इट्स नॉट इस्लाम, इज़ अ स्टेगनेंट ग्रोथ। असल ग्रोथ क्या है कि आप लोगों में कूदें। अल्लाह के नबी ने कहा कि वो बंदा जो लोगों में रहता है, मिलजुल के काम कर रहे हैं, साथ रह रहे हैं, और उसमें एक दूसरे की प्लस माइनस आनी पड़ती है, पॉजिटिव नेगेटिव चलते हैं, आपने अकेले कहीं जाना है आप अकेले जा रहे हैं, दो लोगों को साथ लेके जा रहे हैं, कुछ ना कुछ एक सब तो आएंगे, बट वो बेहतर है जो लोगों में रहता है और उनकी तकलीफ़ और इज़ाओं पे सब्र कर लेता है, उस शख्स की नस्बत जो अकेला रहता है। इस्लाम का मिजाज इज्तमाईत का है, यहाँ से इसको भी देखेंगे इंशाल्लाह, और इस पूरे सेशंस के एंड पे मुझे याद भी दिलाइएगा, ये प्लान में भी मौजूद है, आपको फिर इज्तमाईत भी सिखानी है, क्योंकि इस्लाम इज्तमाईत का दीन है। इस्लाम अकेले अकेले अपनी मर्ज़ी से अपनी जगह खुद रो पौधों का दीन नहीं। ये दिन की पाँच वक्त की नमाज़ें जो इबादत में हम जमात में पढ़ते हैं, इज्तमाईत का दर्स देती हैं। आप हज करते हैं, इज्तमाईत का दर्स है, पूरी दुनिया में एक दफ़ा एक बड़ा क्राउड तो देख लो, पूरी दुनिया के मुस्लिम्स होते क्या हैं, दिन में पांच दफ़ा देखो तुम्हारे इस गली मोहल्ले में कितने मुस्लिम्स हैं, नमाज है, ईद की नमाज इज्तमाईत है, इस पूरे शहर के लोगों को एक जगह जमा करके एक बड़ी जगह नमाज पढ़ाओ ताकि तुम्हें अपने शहर के मुस्लिम्स की स्ट्रेंथ तो समझ आ जाए, और इसी तरह से ज़कात देते वक्त देखो कि इस मुल्क में, इस शहर में, इस जगह कितने लोग ज़रूरतमंद हैं। हर इबादत इस्लाम की इज्तमाईत का दर्स देती है। आज हमें नेकियों का जब शौक़ भी आता है ना बहुत ज़्यादा, तो हम इनफरादी नेकियाँ करके बड़े खुश हैं। अगर अल्लाह के नबी ने इनफरादी दीन देना होता तो बदर से तबूक ना होती, बिलीव मी, अल्लाह के नबी जैसा कामयाब लीडर, कायद, उस्ताद, मुरब्बी, मुज़क्की मक्का में तो थे ही थे, मदीना में बेताज बादशाह होते अगर वो इनफरादी ज़िंदगी बसर करते, आपकी इबादत की कोई हद और इंतहा ना होती। लेकिन जितनी स्ट्रगल, जितने जिहाद और जितने मार्के हैं वो तो जंगों के दिख रहे हैं ना, अल्लाह के नबी साथ साथ दूसरे काम भी करते थे। मदीना को जो आपने प्लान किया, जो वर्क प्लान सेट किया, ये मवाखात मदीना क्या है, आज सुबह पढ़ाया मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक मेरे आई विश, मैं आप सबको आज एक दिल की बात बताऊँ, आज मैंने आपको फजर से पहले से याद करना शुरू किया, वाई आस्क मी, यहाँ आपको अख्लाक शुरू करा रही हूँ ना, वहाँ आज अल्लाह के हुक्म से टॉपिक क्या था, इस्लामी किरदार की कामयाबी। ये मेरे स्क्रीन पे खुला भी होगा, मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। यानी मैं खुद देख के वो बोलती हूँ जो था, यानी आज वहाँ वो बिल्कुल बुक का एंड है। इतनी खूबसूरत बुक है, इंशाल्लाह थी कि आपने इनको भी पढ़ानी है। और आज पूरा वक्त वहाँ अखलाक, अखलाक के नबी सल्लम ने जो दीन का इनकलाब बर्पा किया था ना, उसका फोर्थ कॉम्पोनेंट क्या था? मुस्लिम किरदार की ताकत। यानी दलील भी दी, अपील भी किया, तनकीद भी की। ये तीन पढ़ा चुकी हूँ, आज शुरू किया है। उसका नाम है अखलाक मुस्लिम किरदार। प्रोफेसर सल्लम ने अपने साथियों की जो करेक्टर बिल्डिंग की थी ना, असल में आपकी वो ताकत थी। ये देखिए, मुस्लिम किरदार की अखलाकी कुव्वत। मुस्लिम्स के पास वेपन्स नहीं होते, हमेशा ही थोड़े होते हैं, पैसे तो होते ही कोई नहीं, जंगों में नफरी भी कम थी, बट नबी सल्लम ने सहाबा की जो करेक्टर बिल्डिंग की थी ना, और जो उनका अखलाक था, ये उनकी कुव्वत थी। अखलाक इज स्ट्रेंथ, करेक्टर स्पीक्स हेयर, करेक्टर काउंट्स हेयर, वर्ड्स आर कह लेते हैं ना कि करेक्टर इज हैवियर देन वर्ड्स। आप 1 लाख लफ्ज़ बोले, उसकी जगह एक, यानी एक मन लफ्ज़ उसके मुकाबले में एक कौन सा अमल रख दे, दैट इज़ बेटर। इतना खूबसूरत। और मैं कहती, हाय कोई तो आप में से सुन रहा हो, और मुझे बता आप में से किसी ने नहीं सुना। आप तो उस वक्त अभी खुमार दूर करके, इन बिटवीन नमाज का वक्त आता है, फिर बीच में हमने लेकर पढ़ा। लेकिन बिलीव मी, मेरा एक एक जुमला जो मैं सुबह बोल रही थी, तो मैं दुआएं कर रही थी, अल्लाह आप सबको ऐसा करते, क्योंकि आज हम अखलाक पढ़ रहे हैं। और इतने खूबसूरत जुमले, इतने खूबसूरत कि अभी दिल कर रहा है वो ही पढ़ाने शुरू कर दो। लेकिन इंशाल्लाह वो भी पढ़ेंगे, वक्त लगेगा। आप वहाँ पहुँचेंगे तो याद रखिएगा अपना अखलाक। अखलाक इज़ वट इज़। अब चलिए अपनी शीट पे, यहाँ जो आपको पहला पेज है इस पे लिखिए, होता क्या अखलाक और खुलुक। और इंशाल्लाह फिर इसको अब हम पूरे 4 दिन करेंगे। दुआ कीजिए कि हमारी भी गवाहियाँ हमारे घर वाले, हमारे साथ रहने वाले देने लग जाएं। हमारे यहाँ फर्स्ट टाइम देखिए कि यदि इस बात को शुरू करने से पहले, आम तौर पे हमारे यहाँ अच्छा अखलाक किसको कहते हैं, या अखलाक का क्या तसव्वुर है? आपसे पूछने की बजाय अगर मैं खुद भी बता दूँ, तो आई थिंक सो हम सबका सेम ही आंसर होगा, क्योंकि हम सबका ब्रॉट अप इंडियन और पाकिस्तानी, यानी सब कॉन्टिनेंट है। अच्छा अखलाक क्या है? बड़ा मुस्कुरा मुस्कुरा के बोलना। फलां का अखलाक बड़ा अच्छा है, आते ही भाभी चाय पियेंगे, भाई जान आप बैठिए। हमारे अच्छा अच्छा अखलाक क्या है? किसी के गले पड़ जाना, और पहले उसको ठंडा पिलाना, फिर उसको गर्म पिलाना, फिर खाना तो अब खा के ही जाएंगे ना, और फिर लोग कहते हैं बड़ा अच्छा अखलाक है उनका, खाया साथ भी दे दिया, अखलाक और भी बड़ा अच्छा हो गया। यानी मोस्ट लाइकली हमारा जो कल्चरली अखलाक है ना, जहन में वही तसव्वुर आता है। एम आई राइट और रॉन्ग? और बद अखलाक या बुरा अखलाक किसी का क्या है कि मसलन गए तो उसने खाने ही नहीं पूछा। अच्छा, हमारी बहुत सारी डिक्शनरी खाने पे चलती है, पूछा ही नहीं, चाय का वक्त था, खाने का वक्त था, टरखा दिया, जुबान ही बैठ के पूछती रही क्या खाएंगे क्या खाएंगे, खाना आगे रख दिया लेकिन खा ही नहीं खाए, कितने बद अखलाक हैं, है ना? और उसमें कोई डिफरेंस नहीं है मर्द और औरत का, और उसमें सेग्रीगेशन थी कि नहीं। और अगर घर जाएं और मर्द कोई ना, और डोर पे वो कह दें कि भाई आप अभी ना आइए, घर में कोई मर्द नहीं है, इससे भी ज़्यादा कोई बद अखलाक होगा। और अमूमन मैंने देखा है जो अखलाक गिना जाता है या काउंट होता है, वो बखमों का है। और आने वाली लड़की को लोग माइक्रोस्कोप में लगा लगा के देख रहे होते हैं कि ये अखलाक की किन बुलंदियों पे है, हैं? लेकिन आइए ज़रा देखें अखलाक क्या होता है। सुबहान अल्लाह, जब मैंने फर्स्ट टाइम ये कॉन्सेप्ट समझा था, तो मेरा दिल किया था मैं सजदा करूं। लफ्ज़ अखलाक खुलुक से, खा लाम काफ इसका रूट है। और आपको पता है खुलुक किसको कहते हैं? वो डिक्शनरी की ज़ुबान से, पुराना होना। जो कपड़ा बहुत पहन ले, और वो जिसको पंजाबी में कहते हैं हंड जाए, और उर्दू में कहते हैं कि सॉफ्ट हो जाए, पतला नरम जिस्म पे पहने, पता ही नहीं चला 4 साल पुराना जोड़ा जो मज़ा देता है वो नया जोड़ा देता है? बोलिए, नए कपड़े दूसरों को दिखाते हैं और अपने लिए क्या पहनते हैं? पुराने। तो अखलाक पुरानी चीज़, यू फील कंफर्टेबल विद दैट, यू डोंट नीड टू पोज समथिंग, पहन के एकदम आप तकल्लुफ में नहीं गए। अखलाक क्या है? मैं एक आपको इसकी डेफिनेशन लिखाऊंगी, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। देखिए, दो लफ्ज़ पहले लिखे, खलक और खुलुक, यानी एक ही तरह लिखे, खा लाम काफ, एक पे ज़बर डाल दीजिए, एक पे पेश डाल दीजिए। खल्क कहते हैं आपकी मेरी ज़ाहरी हैयत, फेस बॉडी शक्ल सूरत, वो चीज़ जिसको आंख से देखा जाता है, समझ गए, फिजिक, फिजिकल अपेरेंस जो आप मेरी और मैं आपकी देख सकते हैं, और ये वो है जो आप और मैं अपनी एक दूसरे की अपनी आंख से देखते हैं। खल्क क्या है, जिसको आप आंख से देखते हैं, और खुलुक क्या है, इंसान की फितरत और तबीयत जिसे बसीरत से देखा जा सकता है। आप कह लीजिए कि खल्क आउटर स्केल्टन है और खुल्क इनसाइट है, अंदर से है। क्या पता चला कि अखलाक इंसान के जाहिर का नाम और खुलुक उसके बातिन का नाम है। फर्स्ट थिंग समझ आ गई, तीन चीज़ें बोली हैं, रिपीट करती हूँ। अखलाक खुलुक में पुराना होना है, यानी ये चीज़ अब आपकी तबीयत का हिस्सा बन चुकी है। आपको तकल्लुफ़ नहीं करना पड़ता सच बोलने में, सोचना नहीं पड़ता आपको सब्र करने में, आप सवाब समझ कर शुक्र नहीं करते। दिस इज़ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। जैसे आप देखिए कि एक प्रिंट होता है जो कपड़े के ऊपर लगाया जाता है, जिसको ब्लॉक प्रिंटिंग कहेंगे आप। पेंटिंग कर दी कपड़े के ऊपर, कुछ ऊपर से कलर डाल दिए, खूबसूरत ये ज़्यादा लगते हैं, लेकिन एक दफ़ा धो के देखें वो दोबारा पहनने के काबिल ही नहीं होंगे। और एक वो है जो कपड़े का प्रिंट है, जैसे आप ये देखिए प्रिंटेड कपड़ा, आप भी मैं भी पहनते हैं ना, आप इसको 10 दफ़ा धोएंगे, 100 दफ़ा धोएंगे, इसका प्रिंट नहीं उतरेगा। वजह, इट्स इन वीविंग, कपड़े के ताने बिन बाने में आ गया। तो अखलाक ताने बाने में अच्छी चीज़ों का आना है, अच्छी चीज़ें आपके ताने बाने में आ गई। ताना बाना आप समझ रहे हैं, कपड़े के, आप देखिए एक ऐसा धागा होता है और एक ऐसा होता है, जिन्होंने भी कभी यान का काम किया उनको पता होगा, एक को ताना कहते हैं और एक को बाना कहते हैं। उसमें जो प्रिंट डल जाता है ना, उसको हम प्रिंटेड कपड़ा कहते हैं। ऊपर आप प्लेन पे कढ़ाई कर लें, आप पेंट डाल दें, वो क्या है, आर्टिफिशियल है। अखलाक आपकी शख्सियत के अंदर घुस जाता है, ये वक्ती नहीं है, ये कमर्शियल अखलाक है कि हेलो हाउ यू डूइंग, हाउ कैन आई हेल्प यू, और वो परफ्यूम लेके छिड़क रही हैं आपको, और आप ड्यूटी फ्री शॉप से घुस रहे हैं, आप कहते हो कितनी स्माइली लेडी है। दिस इज़ प्रोफेशनल अखलाक, ये उनका मार्केटिंग का काम है। एयर होस्टेस, हेलो क्या हाल है, कैन मे आई हेल्प यू, ये उनका बिजनेस है, ये अखलाक नहीं होता। वो कहते हैं ना कि तुम तकल्लुफ़ को भी अखलाक समझते हो, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं ना, यहाँ लोग आप केक पेश करते हैं किसी को ईद पे, ताकि उससे $5,000 का कोई फ़ायदा ले ले। अखलाक क्या, क्या आपकी तबीयत में घुस गया। चलिए अब अच्छा भी है तो बुरा भी है, तो दोनों का फ़र्क देख लेते हैं। नाम नहीं लेती, हालांकि मेरे सामने लिखा हुआ डिक्शनरी है एक इमाम जुरजानी की, कहते हैं कि अखलाक नफ्स की रासिख कैफियत का नाम है। रासिख मीन जमी हुई। आप सोचते हैं रसूख क्या होता है, असरो रसूख क्या है, दिस एंड दैट है, वही चीज़ है इसमें। अखलाक क्या है, बंदे के नफ्स के अंदर ठुकी हुई कैफियत जिससे अच्छे या बुरे काम सहूलत और आसानी से सादर होते हैं। असल में जो मैं लफ्ज़ आपको लिखाना चाह रही ना, सहूलत, यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट दैट। मुश्किल नहीं है आपके लिए फिर आहिस्ता बोलना, आपके लिए सॉफ्ट स्पोकन होना ऊपर की चीज़ नहीं है, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, ओ कोई आया हुआ है तो ज़रा नरमी से बात करूं बच्चों से, और कोई नहीं है तो सख्ती से बात करूं, और किसी को देख के स्माइल देना है तो ज़रा मैं स्माइल ले आऊं, खुद ही आ जाए मुंह पे रिफ्लेक्सली। होपफुली समझ आ रही है बात, सहूलत के साथ किसी से अच्छा या बुरा काम हो जाए और नेक्स्ट स्टेप लिखें, इसके करने के लिए सोच विचार के तकल्लुफ की ज़रूरत नहीं होती। फिर अगर अच्छे अखलाक सादिर हो यानी होने लगें, तो इसे अखलाक हसना कहेंगे, और अगर बुरे काम खुद ब खुद होने लग जाएं तो इसको अखलाक सैया कहते हैं। बात समझ गए, इजी है। अच्छी बातें खुद ब खुद होने लग जाएं तो आप अच्छे अखलाक पे हैं, और बुरी बातें खुद ब खुद होने लग जाएं तो बुरा अखलाक है, ये मानिए इसका। और इमाम इब्ने तैमिया ने तो क्या खूबसूरत रिश्ता जोड़ा है, सुन लीजिए उनका एक कॉल। कहते हैं कि अखलाक का मफहूम ईमान के मफहूम से जुड़ा हुआ है। ज़रा से इस शीट को नज़र डालें, अखलाक किधर है, डे 4 पे, वीक 4 पे, और ईमान किधर था, डे 1 पे। इमाम इब्ने तैमिया कहते हैं कि अखलाक, ये इधर आप देखेंगे तो आपको मेरे हाथ याद रहेंगे बाद में, अखलाक ईमान के मफहूम से जुड़ा हुआ है। जितना ईमान प्योर खूबसूरत साफ सुथरा उतना अखलाक अच्छा, यही है रूट टू फ्रूट, बिलीव मी। हाफिज़ इब्ने कय्यम कहते हैं कि अखलाक की दो किस्में हैं, अखलाक मज़मूमा मुज़म्मत के काबिल जिसको बुरा कहा जा सके, और अखलाक फ़ाज़िला फ़ज़ल से, फ़ाज़िला बोल रहे हैं उर्दू में बोल रहे हैं तो, ये इनकी किताब अल फवाइद में 197 पे है। तो ख़ुलासा क्या है, अखलाक हसना क्या हुआ, अच्छे काम करना बग़ैर मुशक्क़त के, बग़ैर तकल्लुफ़ के, बात समझ गए। फिर वो मासियों के साथ बात करने का स्टाइल, और अपनी क्लोज सर्कल फ्रेंड्स के साथ बात करने का स्टाइल सोच के नहीं करना पड़ता, हर वक्त एक है। दूसरों के बीच में फलां सुन रहा है, घर में मेहमान है, फिर शौहर को बार बार याद नहीं दिलाना चाहता, आहिस्ता बोलिए अंदर मेहमान है जी, फलां आए मैं ज़रा आहिस्ता बोले। कभी आप देखे ड्राइंग रूम में आते ही जो बेगम का चेहरा खिलता है अंदर, हेलो क्या और सुनाइए, और ड्राइंग रूम से बाहर किचन में जो डांट के आती हैं शेफ्स को, ये नहीं होता। अंदर पुराना हो गया, घुल गया, यू आर यूज्ड ऑफ दिस, यू फील ईजी विद दैट, दिस इज़ आला अखलाक। और अच्छे अखलाक में बहुत सारी चीज़ें, मसलन सखावत, आपको सोच के और किसी के मोटिवेशन पे मजबूर होकर खर्च नहीं करना कि ओके मुझे अब देना ही पड़ेगा, स्पीकर ने फंड रेजिंग में इतना जोर लगा दिया कि कुछ खर्च करो कुछ खर्च करो। सखावत उबलती पड़ती है, उस्मान की तरह, अबू बकर की तरह, अब्दुलरहमान बिन औफ की तरह, हाथ में टिकता ही नहीं, वो गिरता ही जाता है गिरता ही जाता है, फिर सोचते नहीं अच्छा है प्रोज एंड कॉन, दिया तो क्या होगा ना दिया तो क्या होगा, कितना दूं कब दूं किसको दूं, मेरा काम देने का आगे अल्लाह जाने उसके बंदे जाने। सखावत सखी जेनरस। फिर अदल, अदल क्या है, मुझे सच बात कहनी है चाहे मेरा पसंद का बंदा है या नापसंद है, माँ और भाभी के बीच में झगड़ा है किसका कसूर था कौन हक पे है, मुझे अदल की बात करनी है। ए दिल हुआ अकरबु ले तकवा, तकवा अंदर आता जाएगा अदल सामने आता जाएगा। इसी तरह सब्र, यू आर नॉट फोर्स टू बी पेशेंट, सब्र क्या है कि आपकी ज़ात सब्र वाली है, हर जगह साबिर है आप, सफ़र में साबिर, हज़र में साबिर, आपको कुछ मिल गया तो साबिर, ना मिला तो साबिर। थोड़ी सी इसकी डिटेल्स हम करेंगे अभी आज इंशाल्लाह। हिल्म बी हिम हिल्म, और हिल्म को तो लिख लीजिए, मैं एक जुमला अपना पसंदीदा बोलने लगी हूँ, इल्म और हिल्म मिल जाए दिस इज़ बेस्ट करेक्टर। जब इल्म वालों के पास हिल्म नहीं होता, हिल्म को हलीम से याद कर लें, सॉफ्ट टेंडर खुले हुए, आज बात करेंगे इंशाल्लाह हम थोड़ी सी। इल्म और हिल्म मिल जाए दिस इज़ द करेक्टर वी नीड टू रेस, ये किरदार चाहिए। जब हिल्म है ना सिर्फ और इल्म नहीं, तो आप इस दीन की हदों से बाहर निकल कर हलीम हो जाएंगे, फिर औरतें मर्दों के साथ और मर्दें औरतों के साथ बड़ी सॉफ्ट होंगी। और सिर्फ इल्म हो और हिल्म ना हो तो आप कुंद छुरी हैं, ये भी जहन्नम है ये भी फलाना, ये जहन्नम ये उधर उधर, हिल्म और इल्म को आज के दौर में मिलाने की ज़रूरत है, ये नहीं मिल पा रहा, मुश्किल से मिलता है, कितनी मुश्किल से घोटते हैं हलीम, कभी कोई दाल सख्त रह गई तो कभी कोई रह गई। तो ये इल्म जो आप इल्म ले चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 1 साल कुरान का एक दफ़ा करके, अब आपने हिल्म लेना है, और अब आपको समझ आएगा कि ये 114 सूरतों को जज्ब कैसे करना है, और ये जिस्म कैसा कैसे बनती हैं, ये वक्त पे आयतें याद कैसे आ जाती हैं, और ये मौका बे मौका जब हालात आते हैं तो किस तरीके से कॉप करती हैं, यानी एब्जॉर्बिंग का वक्त है। आपने दाल कभी पकाई होगी, कल तो फ़ौरन जाती खुलती बड़ी देर से, कई लोग वहीं पका के बंद करते हैं, और जिनकी मज़े की होती है देखिए उसको घोलते हैं, घोटना पड़ता है। अब आपने कुरान का जो इल्म लेना इसको घोटना है, और अगर नहीं घुटेंगे तो आपकी मर्ज़ी, फिर आप बड़े मार के करेंगे और हम तक खबरें पहुंचेंगी। वो आपकी स्टूडेंट ने ये किया बिलीव मी, और वो फलां वो शादी में थी, एक बाल नज़र आ रहा था उनके सर से, कुरान का कोर्स करती हैं और एक बाल, और वो स्काफ पहन के गीबत कर रही थी, अस्तग़फिरुल्लाह, ये पिताने मिलेंगे हमें बिलीव मी। और अगर आप हिल्म बन गया आपके अंदर, सब्र आ गया सब आ गया, तो फिर आप चमकेंगे, और फिर कहना भी नहीं पड़ेगा, सबको पता लग जाएगा आप क्या हैं। मैं कहती हूँ कि अगर आप में से कोई यहाँ अपने आप को स्टेज पे देखे ना, अपनी ज़िंदगी की हर दूसरी चीज़ छोड़कर सिर्फ इसको लेने पे तैयार हो जाए, क्योंकि आप खाना पका लें लेकिन फाइनल टचेस ना दें और सर्व कर दें, कोई भी नहीं खाएगा। अच्छा नहीं होगा खाना। तो ये जो चीज़ है ना, ये आपके अखलाक में वक्त के साथ आएगी, आती है, आ रही होती है, हमें पता नहीं चलता, लेकिन कुछ ना कुछ गल रहे हैं हम। एक वक्त आएगा जब हम एक मुकम्मल पर्सनालिटी पे आएंगे, फिर आप खुद को नहीं पहचानेंगे। मैं लिख के दे सकती हूँ आपको, आई हैव दिस कॉन्फिडेंस, आई कैन से दिस, कि अगर आप वही करते जाएं जो आपसे मतलूब है और कहा जाए, 2 साल के बाद आप अपने आप को पहचानेंगे नहीं। और अगर आपको आजमाना है तो किसी बंदे को जाकर देख लीजिए जो आपके मरहलों से गुजर चुका। सब्र आता ही नहीं है, अल्लाह के रस्ते की भाग दौड़ समझ ही नहीं आती, हिल्म आता ही नहीं है, ये बड़े बड़े काम करने का हौसला आम बंदों में तो होगा नहीं, उनकी तो जान निकल जाएगी। वो अपनी ज़ात पे कुछ खर्च करेंगे ना, तो वो हज़ारों का चेक लिखेंगे, बस वो ये देखेंगे बैंक में पीछे कुछ है अभी के नहीं, चेक बाउंस ना हो जाए, ख्वाहिश है ना एक। और जब वो अल्लाह के रस्ते में देंगे, एक लिखेंगे अदद, 2 ज़ीरो भी डाल देंगे तो 10 सवाल करेंगे, किसको देंगे, कहाँ लगेगा, कहाँ जाएगा, ये शख्सियत नहीं रहती। फिर वो कहते हैं कि जानता हूँ सवाबे जोहद, लेकिन तबीयत इधर नहीं आती तो क्या करूँ। और अलामा इकबाल का एक बड़ा प्यारा शेर है फारसी का, मफहूम क्या है कि तू गनी तू जानता है हिसाबे कमो बेशरा, मेरा काम काम करना था कर दिया। यानी ये जो हम कहते हैं इतने नफिल पढ़ो तो इतना अजर, इतने, वो कहते हैं अल्लाह तू ये हिसाब रख, मुझे नहीं आता ये हिसाब किताब रखना, मैंने नेकी कर दी, तू जाके इसमें कमो बेश, इसमें जीरो कम लगा दे, ज्यादा लगा दे, आई डोंट माइंड इट, मेरा काम था काम करना। और बड़े बड़े सलाफ कहते थे कि नेकी की तौफीक मिल जाए और नेकी हो जाए, उसके बाद मैं प्लस माइनस में नहीं पढ़ता। ये गिन गिन के नेकियां करना और गिन गिन के दीन के कामों में आना और लगाना और जाना, ये आम लोगों का काम होता है। चलो कुछ तो कर लें, चलो कुछ तो वक्त लगा दें, चलो एक दिन ही से हफ्ते में, चलो एक, चलो कुछ नहीं वो ख्वाब देख लिया, कोई सदका कर दें $50 का, ये आम लोगों का खाता होता है। बड़े लोगों के खाते सांझे होते हैं, अल्लाह का खाता उनका खाता एक होता है, एक अकाउंट होता है अल्लाह और बंदे का। जिसको पहले ज़रूरत पड़ गई उसका, नहीं पड़ी तो कोई बात नहीं, फिर से फिर देख लेंगे नेक्स्ट टाइम। बात समझ गए? तो ये सारा चीज़ें आपका अखलाक, अखलाक इज़ ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी, यू। जब आप कहते हैं आई एम, दिस इज़ अखलाक। अखलाक का ताल्लुक ज़ाहरी चंद चीज़ों से नहीं है, मामलात, असूलन मैंने आपको ये मामलात से पहले पढ़ाना था, बिलीव मी, मैंने सोचा भी था, फिर मुझे लगा कि जो हुकूक़ुल इबाद के साथ हमारे जहन में आते हैं, माँ बाप के हुकूक, बच्चों के, ये अब आखिरी वीक पर डाल दूंगी तो आप लोग कहेंगे शायद अहम ही नहीं है, इस सोच से मैंने आपको पहले पढ़ाया। क्यों? ये जो पढ़ने लगे ना, ये अखलाकियात रूह है मामलात की, ये लिख लें, अखलाकियात की, अखलाकियात रूह हैं मामलात की। आप एक अच्छा किरदार डेवलप कर दें, बच्चों का चलें अब करना शुरू कर दें, अपना तो वक्त गुजर गया हमारा, अभी तो मेहनत में ही है ना। अच्छी माँ, अच्छी बहन, अच्छी बेटी, अच्छी बहन बन जाएगी, वो अच्छी स्टूडेंट भी होगी, वो अच्छी नेबर भी होगी। बात समझ गए? जो अच्छा होगा ना, मैं अक्सर जुमला बोलती हूँ, जो अच्छा बेटा है वो कल अच्छा शौहर भी होगा, कल अच्छा बाप भी होगा, वो अच्छा भाई भी होगा। आप किरदार 2-4 अपने जहन में लें, अपने इर्द गिर्द वालों के, खानदान के ले लें, बहन भाइयों में ले लें, जिसको अच्छा कहेंगे उसको सभी अच्छा कहते हैं, और उसमें ये अखलाकियात होंगी जब हम पढ़ने वाले हैं। बात वाजे? और जो ख़राब होते हैं ना, वो फिर पहले माओं ने बिगाड़ा होता है, फिर वो बीवियों को तंग करते हैं, फिर बहनों को सताते हैं, फिर बाद में वो सारी उम्र तंग करते हैं, वो किरदार की कमियाँ होती हैं। तो बहरहाल अच्छे अखलाक में हिल्म भी है, हौसला भी है, शुजात भी है, एहसान भी है, नरमी भी है, और इसमें आप एक लंबी लिस्ट देखेंगे, खैर ख्वाही भी इसी में आती है, हया भी इसी में है, सब्र और शुक्र भी इसी में है, गिना भी इसी में है, रहम और अफ़ो दरगुज़र भी इसी में है, और इसी तरह फिर छोटों बड़ों के साथ शफकत भी इसी में है। इंशाल्लाह हम कोशिश तो यही करेंगे कि 2 दिन अखलाक हसना करें इन 4 दिनों में से, और 2 दिन में अखलाक सहिया करें। वैसे असूलन मुझे एक ही दिन में सारा अखलाक हसना करा के 3 दिन में अखलाक सहिया पे बात करनी चाहिए, बिलीव मी, अगर एक अच्छे डॉक्टर की नज़र से देखूँ ना तो मरज़ उधर ज़्यादा है। अच्छी चीज़ें तो होती ही हैं, बट बुरी नहीं छूटती, प्रॉब्लम ये है। तो देखते हैं आपके नसीब में क्या है जिस पे अल्लाह ने आपका रखा हुआ। अब सवाल पैदा होता है, यानी ये अच्छे अखलाक की बात तो हमने कर ही ली, और अखलाक हसना जो है ना, इसी का दूसरा नाम अखलाक फाजिला भी है, फाजिला फजल से है, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। फिर इसके बाद सवाल पैदा होता है कि इतने अच्छे अच्छे अखलाक हैं तो बंदा अपने अंदर ये लाता कब है? यानी सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं चाहती हूँ कि मेरे अखलाक अच्छे हो जाएं, बगैर मेहनत के करने पड़ जाएं, चाहते हैं ना? अभी तीन बातें लिख लीजिए। नंबर एक, हक को पहचान लें तो अखलाक अच्छा हो जाएगा। जब आपको हक समझ आ जाता है ना, तो उसको अपनाना मुश्किल नहीं है। दूसरा, नेकी की हकीकत को पहचान कर इसकी हिरस पैदा करने से। आप देखिए, अच्छे अखलाक, अभी मैं चंद रिवायतें नोट कराऊंगी आपको। क़यामत के दिन नमाज रोज़ों से ज़्यादा अच्छा अखलाक जाएगा। कौन सा नमाज रोज़ा? नफली फ़र्ज़ नमाज रोज़े का कहीं तकाबुल नहीं है अखलाक से। तीसरी बात यह कि खैर से मोहब्बत करें और इसे तरजीह देना सीख लें और खैर और खूबी को अपना लें। जब ये तीनों काम आपकी तबीयत का हिस्सा बन जाएंगे ना, तो आपसे अफ़ाले हसना अदा होंगे, फिर तकल्लुफ़ और मेहनत नहीं होगी। तो क्या पता चला? अच्छे अखलाक अपनाने के लिए आपको हक को पहचानना पड़ेगा, नंबर वन, नेकी की हकीकत को पहचानना पड़ेगा, और खैर से मोहब्बत करना पड़ेगा। अब है तो आगे, लेकिन अभी इधर ही लिख लेते हैं कि अखलाक सहीया क्या होता है, क्योंकि वो भी तो अभी समझ आ जाएगा तो बेहतर है। जो कुछ अभी कहा है ना, उसका ऑपोजिट। बुरा अखलाक कौन सा? बुरे अकवाल और अफाल का बिला तकल्लुफ और बग़ैर मुशक्क़त के आसानी से अदा हो जाना अख़लाक़े सजिया कहलाता है। इसको अख़लाक़े मज़मूमा भी कहते हैं। मसलन, झूठ, बदहती, ख़यानत, बेसब्री, बेहयाई, ज़्यादती करना किसी पे, सख्ती करना, जुल्म करना, और बाकी लिस्ट 2 दिन बाद मिलेगी आपको इंशाअल्लाह ताला। यकीन करें, वल्लाह ही, अगर हमने ये 8-10 साल की उम्र में पढ़ा पढ़ाया होता, तो आज उम्मत मुस्लिमा दुनिया की बेहतरीन उम्मत होती, यकीन कीजिए। फिर ये कैसे होता है? अब सवाल था कि अच्छे अखलाक कब होते हैं? जब हक की पहचान हो जाए, जब नेकी की असल आ जाए समझ। बुरे अखलाक कब आते हैं? कौन है जो बुरे काम करते हैं? नंबर एक, जब इंसान के अंदर के खैर और भलाई को भरा ना जाए। हर इंसान सोने की कान है, लेकिन सोने को कान से निकाल कर ढालना पड़ता है। डायमंड पहले कार्बन होता है, काले रंग का होता है जब निकलता है पहाड़ों से, फिर उसको कई मराहल से गुजार कर चमक दी जाती है ना। हर बंदे में खैर है, लेकिन उसको उभारा ना जाए तो बंदा बुरा बन जाता है। दूसरी बात, इंसान की महज़्ज़ब तरबियत ना की जाए। माँ बाप ने बिगाड़ दिया, पहली गाली पे लड्डू बांटा, आज बेटे ने गाली दी है, पर वही गाली जब माँ बाप को पड़ती है तो रोएंगे। तहजीब नहीं होती, तरबियत नहीं होती। तीसरी चीज़, तहजीब। कुछ लोग तहजीबन बद अखलाक होते हैं, गाली के बगैर बात ना करें तो कहते हैं मज़ा ही नहीं आया। मर्द है तो गाली ना दे, कई लोग हैं कहते हैं लड़का है तो गाली ना दे, ये क्या बात है, वो लड़का ही नहीं, उसकी मर्दानगी के ख़िलाफ़ है। तो तीन चीज़ों से बुरे अखलाक बनते हैं, अंदर की खैर ना उभारी जाए, बुरी तरबियत की जाए, और गैर मुनासिब तहजीब में रखा जाए। फिर बंदे को बुरी आदतें अच्छी लगने लगती हैं, बुरी आदतें बुरी अच्छी आदतें बुरी लगती हैं और बुरी अच्छी लगती हैं, और बुरे काम होते हैं। एक सवाल लिखिए, क्या इंसान का अखलाक बदला जा सकता है? क्वेश्चन, कल तक सहीया था, आज हसना हो सकता है? कल तक मजमूमा था, आज फादिला हो सकता है? सवाल पैदा होता है, आप बताएं मुझे सोच के, कितने लोग कहते हैं कि यस, अखलाक चेंज हो सकता है, और कौन कहता है नहीं जी नहीं, ये जद्दी पुश्ती ऐसे हैं, ये नहीं बदलेंगे। देखिए, लिखिए, आप सबके जवाब इकट्ठे हो जाएंगे। नंबर एक, अखलाक तब्दील हो सकता है, डेफिनेटली। अगर ये मुमकिन ना होता, अगर ये पॉसिबल ना होता, तो क्वेश्चन ये है कि फिर तालीम व तरबियत, वाज, नसीहत, और अंबिया और आज के मुबल्लिगीन, टीचर्स, प्रीचर्स, इनकी कोशिशों का क्या नतीजा निकलता? बात समझ गए? टीचर क्या कहता है? बच्चे की अच्छी तरबियत करे, तो बदलना ही नहीं, वो तो अंदर है जो आ गया, तो फिर तो ये सारी बेकार है। फिर दूसरी बात देखिए कि इंसानी माशरों में जो प्रॉफिट्स ने काम किया, उन्होंने तो असल में इंसानी जिंदगियों को तब्दील किया है ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? अरब के बदुओं को इमाम बना दिया, बात बात पे। ये सुबह पढ़ा के आई हूँ, वो मिसालें दिमाग में अभी भी। कितनी बड़ी चेंज अल्लाह के नबी ने पैदा की हज़रत उमर फारूक के बीच में। कुफर के लिए तलवार निकलती थी, इस्लाम के लिए निकलने लग गई। उमर किसी जगह फिट ही नहीं होते थे, हाथ हर जगह उनको प्रॉब्लम्स होते थे, और बार बार अल्लाह के नबी उमर सबर, उमर अभी सबर, उमर सबर, तो उमर दब गए, तब्दीली की आपने, डेफिनेटली इट्स पॉसिबल। फिर आप देखिए कि अल्लाह ने इंसान के अंदर बदलने और असर कबूल करने की सलाहियत रखी है, तो आप कह सकते हैं कि अखलाक भी तब्दील होता है, मुनज़्ज़म और उसको मुस्तहकम किया जाता है। करें कैसे? क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अखलाक तब्दील कैसे होते हैं? नंबर एक, किसी शख्सियत को रोल मॉडल बना लें। तब्दीली के लिए एक प्रैक्टिकल एक पर्सनैलिटी लाजमी होती है, यानी आप कहें कि ये तब्दीली थियोरेटिकल नहीं आती, और ये फ़र्क हम देखते हैं ऑनलाइन और ऑन साइड स्टूडेंट्स में मोस्ट लाइकली, जो सिर्फ इल्मी फ़ायदे ले रहे होते हैं ना, लेकिन उनके साथ भी अल्हम्दुलिल्लाह ग्रुप लीडर्स होते हैं, वन ऑन वन बेस पे उनका इंट्रैक्शन होता है, कम तब्दीली आती है सम टाइम, हर जगह नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो ऑन साइट पे बैठकर टीचर्स और हेल्पर्स की मदद से सीखते हैं और उनको एक ख़ास प्रोसेस से गुजरते हैं, चलते बैठते उठते देखते हैं, उनमें तब्दीली ज़्यादा आती है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग क्या है, किसी को आइडियलाइज़ करें। क्वेश्चन क्या है कि मैं किसको करूँ, तो सूरत अहज़ाब 21 ने आपको मुझे एक आइडियल दे दिया, लकत कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नबी सल्लम को रोल मॉडल बना लो। और वो कैसे बनता है? शिमाइल तिरमिज़ी पढ़ लें, शिमाइल नबी क्या है? आदतें, उठना बैठना चलना फिर, ये सारे चीज़ें आपके ऐड होंगी अगले कोर्स में। पहली बुक की मेरा हल है आपको जो शुरू कराई जा रही है दावा की, वह नबी सल्लम एज आ टीचर है ना, आपकी फ़र्स्ट सेशन में वो बुक है। 49 डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं नबी सल्लम की पर्सनालिटी के जो आप नूरुल्लाह नूर में पढ़ेंगे। मुझे तो आप पे रश किया आता रहता है, पता नहीं आपको भी आता है कि नहीं। जो कीमत दे दें वो थोड़ी है, जो वक्त लगा दें वो, जो कुर्बानी दे दें वो थोड़ा है, बिलीव मी आप अपने आप को डिस्कवर करने वाले हैं। कुरान ने भी आपको दिया है, सबीलुल जन्ना अंदर डालता है और नूरुल्लाह नूर बाहर लाता है, तो इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे अल्लाह ने आपके नसीब में अगर किया तो। नंबर दो, दूसरी वजह, इंसान को जो तब्दील करती है चीज़ वो इल्म है। इल्म देखिए, अखलाक का ताल्लुक ईमान से है ना, और दीन को पूरी तरह समझने के लिए इल्म ज़रूरी है, तो कुरान और हदीस का इल्म बंदे के अंदर तब्दीली लाता है। और तीसरी इसकी सूरत है तरबियत, तरबियती निज़ाम के अंदर रहने से तब्दीली आती है। आप तरबियत के मराहल के लिए ख़ुद को पेश कर दें, जिसको कहते हैं ना कि डंडा हाथ में दे के कह दो जो करना है कर लो, बोन लेस मीट बनेंगे। हर रूल रेगुलेशन को अपने ऊपर लें। आप देखिए, एक मीट है ना, गोश्त है, आप उस पर सिरका डालते हैं, फिर आप उसको फोक से क्या करते हैं, मैरिनेट करते हैं, चुभता नहीं होगा गोश्त को, नमक डालते हैं, फिर आप उसके अंदर दही में मिर्चे मसाले डाल के उस गोश्त को करते हैं ना, जब वो गोश्त आपके सामने आता है तो जो उसका टेस्ट है, और अगर आप एक बोटी का ऐसी ऊपर ऊपर थोड़ा सा मिर्च मसाला डाल के पका के रखें, फ़र्क है। ये ओवरनाइट क्यों करते हैं? जो स्टूडेंट्स अपने आप को बोनलेस मीट बनाकर सामने रख देते हैं ना कि जो करना है हमारे साथ कर लो, वो टेस्टी होते हैं, उनका टेस्ट फिर दुनिया भी लेती है। और जो अकड़े सकड़े अंदर, एक कतरा नहीं लेना, ऊपर ऊपर कोटिंग है, वो पहले ही छिलका, आप देखेंगे चिकन आप पकाएं और ऊपर बड़ी मज़े की कोटिंग को, कोटिंग खा लें अंदर चिकन फीका है ना, तो अखलाक के आपके अंदर जाके कचोके लगाएंगे, लगेंगे तो फिर है। और अगर कहते हैं नहीं तो ना से, हु केयर, बात समझ गए, इट्स ऑल अबाउट यू एंड मी, मुझे बनना क्या है। आपको पता है कि हमारे असलाफ ऐसे उस्तादों के पीछे फिरते थे, कहते थे हमें खड़ा करो, हमारे अंदर के खोट बाहर निकालो, हम तुम्हें इजाज़त देते हैं। माएँ बच्चों को, छोटे बच्चों को ले लेके फिरती थी और दुआ देती थी, मुझे इस वक्त याद नहीं है इमाम बुखारी या किन की माँ थी, कि माएँ बच्चों को, जब बच्चे सताते हैं ना, आपको पता है हर बच्चे सताता है, ये सिर्फ अब्दुल्ला ही नहीं सताता, सारी सताते हैं। अच्छा, अब जब वो सताते हैं ना, तो माएँ दुआ, आज से थी कि आपने भी उसको यही दुआ देनी है, माएँ कहती थी अल्लाह तुझे किसी मुहद्दिस के हाथ लगवा दे। आप कहते हैं मुहद्दिस क्या करते हैं? जरा व तादील, क्यों किया, कैसे किया, जरा मीन जरा, बस जैसे जरा हम करते हैं बड़ी, और तादील अदल से, यानी मुफसरी मुहद्दसीन ने अल्लाह के नबी की जो हदीसें कुलक की हैं ना, हर बंदे पर जरा और तादील की है, ठीक है, गलत तो नहीं, झूठा तो नहीं, शराबी तो नहीं, नशा तो नहीं, बीमार तो नहीं, ये हदीस कब पेश की, उससे पहले बीमार हुआ, उसके बाद हुआ, ये जब आप उलूमुल हदीस पढ़ेंगे आपकी आंखें खुल जाएंगी। आज भी दुनिया इस पे मुत्तफिक है कि दुनिया में जिस हस्ती के बोले हुए लफ्ज़ों पे सबसे ज़्यादा वक़्फ़ है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नामुमकिन को मुमकिन बनाया मुहद्दिसीन ने। अभी तो हमने हदीस का भी कोना भी नहीं लिया, लेकिन आप लेंगे इंशाल्लाह। क्या समझ आई आपको कि आपके ऊपर किसी को मुसल्लत कर दिया जाए कि हर बात पे टोको, है जरूरत? आप अभी नाराज़ हो जाएंगे। खुदा हाफिज, आई एम, दिस इज़ माई हाज़ा फ़िराकु बैनी व बैनकुम, आज के बाद ख़त्म। नहीं जी, मुझे कह दिया, अच्छे भली बात कर रहे थे, ये टोक दिया। हम तो अपने बुत लेकर इतने फिर रहे हैं, ज़रा सी बात को, वो कहते हैं ना उंगली पाँव पे पाँव आ जाए किसी के तो हम नाराज़ हो जाते हैं। हम तो इतना नाराज़ होते हैं, आप यकीन करें कि अपने आप को पेश कर दें। कई दिन से मैं सोच रही हूँ, एक सेशन तैयार हो रहा है मेरा, जहन में तैयार होता है, फिर वो बाद में बन जाता है, कि ज़रा अपने आप को पेश तो करें। आप सभी अपने आप को पेश कर दें कि हमारे ऊपर जुमले बोलें, खड़े होके सब बताएं समीना कैसी है। आखिर 2-2.5 साल में समीना का कुछ तो सामने आया होगा, अतीक कैसी हैं और शाहीन कैसी हैं और नौशीन कैसी हैं और आप कैसी हैं, है जरूरत? अस्तग़फ़िरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता, हार्ट फेल हो जाए, ज़रा भी नहीं सुन। लेकिन ये सुनने का हौसला आ जाए तो एक छोटे से हॉल में, कल वहुस्सिल माफ़ी सुदूर, सामने मैदाने हशर में अंदर के बोल खुल रहे होंगे, एक एक बार जो मैं तो हदीस अखबार रहा। तो ये दुनिया में करना बेहतर है, वहाँ खुलेगा तो बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, चलिए अब अगले और अहम सवाल पे जाते हैं कि क्यों अखलाके हसना इख्तियार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखलाके हसना इख्तियार करना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इतनी मेहनत करे कौन, अपने ऊपर इतने कचोके लगवाए, तो उसका जवाब क्या है? नंबर एक, अच्छे अखलाक क़यामत के दिन नामे आमाल को भारी करेंगे। हदीस का हवाला लिख लीजिए, पूरी पूरी हदीसें भी मौजूद हैं और आपको मिल भी सकती हैं, तिर्मिज़ी 2002। मोमिन के तराजू में क़यामत के दिन हसनात में हुस्ने खुल्क से ज़्यादा भारी कोई चीज़ ना होगी, हाई वेट है इसका। दूसरी रिवायत तिर्मिज़ी 1162, ईमानदारों में ईमान के लिहाज से कामिल वो हैं जो अखलाक के लिहाज से अच्छे हैं। तीसरी रिवायत 2018 तिर्मिज़ी, क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल को सबसे ज़्यादा प्यारे और आपसे ज़्यादा करीब वो लोग होंगे जिनके अखलाक अच्छे हैं। आज दुनिया में भी आप और मैं यही चाहते हैं, क्या चाहते हैं? कि अच्छे लोगों में रहें। बिलीव मी, मैं अक्सर एक जुमला बोलती हूँ, दुनिया में अच्छे लोगों का साथ मिल जाना दुनिया की जन्नत है। अच्छे अखलाक वाला शौहर मिल जाए आपकी जन्नत है, कमाए खिलाए वो बाद की बातें हैं, अखलाक तो अच्छा है ना। और अच्छी बीवी मिल गई, कुछ भी ना करे लेकिन उसका अखलाक आपके घर को जन्नत बनाएगा। फिर इसी तरह आप देखिए कि नबी सल्लम ने हुस्ने खुल्क के लिए दुआएं भी की हैं, जो आपको इस पूरे वीक में सिखाई जाएंगी। आज आपने एक दुआ की है ना, ज़रा पढ़ेंगे मिलके? जी, ऐसे ही पढ़ दिए? नहीं, सोच के पढ़ें, अल्लाहुम्मा अहसनत खल्की, इस पे रुके, ए अल्लाह तूने मेरी खल्क अच्छी की। शुरू में फ़र्क समझ आ गया? शक्ल अच्छी, किसको अपनी शक्ल अच्छी नहीं लगती, किसको अपनी शक्ल अच्छी लगती है? इतना तरद्दुत, अल्लाह के पना, किसने बनाई है आपकी मेरी सूरत? अल्लज़ी खलक़क फ़सव्वाक फ़अदलक फ़ी अय्यि सूरतिन मा शा रक्कबक, कौन सी सूरत है? इन्फितार। तो अपनी शक्लों को कभी बुरा ना कहे। चलें अब क्या कहते हैं, फ़ाहसिन खुलुक़े, अल्लाह बखलाक भी अच्छा कर दे। खल्क अल्लाह ने बनाई, उसका पूरा चॉइस है, अल्लाह की चॉइस है। कोई माँ अपने बच्चे के लिए पैसे नहीं देती कि अल्लाह ज़रा पैसे ले लें, बच्चे की आंखें नीली बना देना, रंग गोरा कर देना, वरना हमारे तो पैसे पेट में ही लगने शुरू हो जाते हैं ब्यूटी टिप्स के ऊपर, हैं लंबी आंखें और पतली आंख, पता नहीं क्या कुछ, बहरहाल हैं। तो क्या है वो, तो अल्लाह ने किया, बट ये जो खुलुक है ना, इट्स 100% इन योर हैंड, माई हैंड, कोई चीज़ इसकी रुकावट नहीं है। और याद रखिए कि अखलाक हसना नफ्स इंसानी का कमाल है, ये जुमला ना भूलिएगा, अखलाक हसना नफ्स इंसानी का कमाल है, पीक, پرائم لوکیشن آف انسان کا نفس، اور اسی سے پھر مسلمان حسن اور خوبصورتی حاصل کرتا ہے. اور جتنا زیادہ اس کے اوپر آپ غور کریں گے، آپ کا دل کرے گا کہ اچھا ہو. پھر ایک اور پوائنٹ نوٹ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت انسانیت پر اللہ کا انعام ہے، احسان ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، سورۃ آل عمران میں آپ پڑھ کے آئے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد کیا تھا؟ دو باتیں. نمبر ایک، لوگوں کو اللہ کی عبادت سکھانا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، سورۃ زاریات غالباً کچھ آیت نمبر آپ خود لکھ لیجئے گا جا کے. اور دوسرا مقصد آپ کے دنیا میں آنے کا، آپ کو مجھے اخلاق سکھانا تھا. دلیل نوٹ کر لیجئے، حدیث کے الفاظ کے ہیں، بوئس تو آپ نے فرمایا میں مبعوث کیا گیا لی اتمم، تاکہ میں پورا کروا دوں حسن الاخلاق، حسن اخلاق. یہ موطا امام مالک کی کتاب ہے، کتاب حسن الخلق نمبر 8. تو اللہ کے نبی کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ عمدہ اخلاق کی تربیت. اور آپ خود بھی ایسے تھے. قرآن میں سورۃ قلم آیت 4، آپ کے اخلاق کی گواہی اللہ نے دی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور آپ دوسروں کو ہمیشہ اچھے اخلاق کی تلقین کرتے تھے. آپ کے اندازے تربیت کے بارے میں حضرت انس 10 سال جو آپ کے ساتھ رہے، کیا کہتے ہیں؟ رَأَيْتُهُ، میں ان کو دیکھتا ہوں، یامر بمکارم الاخلاق، کہ آپ لوگوں کو عمدہ اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 6362. گھر کا ملازم خادم یہ گواہی دے دے، اس سے بڑی گواہی اور کیا ہوگی؟ اپنے اوپر بھی لے کر سوچیں، جب سے اس اسکول میں آنا شروع کیا ہے، کوئی ایک نیگیٹو چیز آپ کو سکھائی ہے؟ میں کسی جگہ، ہم تھے ایک کلوز سرکٹ، چھوٹی سی ہماری گیدرنگ تھی، اسٹوڈنٹس بھی تھے، ان کے فیملیز تھیں، تو باتیں چل رہی تھیں. تو ایک ہسبینڈ اپنی بیوی، جو کہ آپ ہی میں سے کسی کے ہوں گے ادھر آنے والوں میں، ان کی بات کر کے بڑے خوش ہو رہے تھے کہ ان کو یہ ہے وہ ہے، لیکن جیسے وہ ایک جوک میں کہہ رہے کہ لیکن کبھی کبھی یہ مجھے وقت نہیں دیتی. تو جو دوسری سسٹر کے ہسبینڈ تھے وہ کہیں گے لیکن یہاں ان کو یہ سکھایا نہیں جاتا. یعنی وہ خود بھی سنتے ہوں گے یا ان کو پتہ. انہوں نے کہا یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ نور القرآن والے یہ نہیں سکھاتے کہ شوہروں کو وقت نہ دو یا ان کی عزت نہ کرو. اور میں چپکے سے سن کے شکر کر رہی تھی کہ کوئی اگر فتویٰ دے رہا ہے تو کوئی اس کا جواب بھی تو دے رہا ہے. آپ خود گواہ ہیں، آپ نے 2-3 سال سے ادھر بڑھا، کوئی ایک برا اخلاق آپ کو اس جگہ میں سکھایا گیا؟ کوئی ایک کسی کے بارے میں؟ تو پھر یہ ٹھیک جگہ ہے. اچھا اخلاق ہر جگہ سے نہیں ملتا، بلیو می. تو بہرحال حضرت انس کی روایت تو نبی کے لیے تھی، تو لہٰذا اس موضوع پہ بات کرنا اور سننا ہم سب کے لیے بہت لازمی ہے. چند آیتیں نوٹ کیجئے گا حسن اخلاق کے موضوع پہ. ایک تو بتا دی سورۃ قلم 4، اللہ نے نبی کے اخلاق کی گواہی دی. دوسری سورۃ آل عمران 159، فَبِمَا رَحْمَتِ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے حق میں بڑے نرم ہیں. کون؟ نفس سلم. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر آپ سخت دل ہوتے، گندی زبان والے ہوتے. فظ کیا ہوتا ہے؟ انتڑیوں میں بہنے والا گندا پانی، اوجڑی کا پانی. غلیظ القلب، سنگ دل، سخت دل. لن فدو من حولک، تو آپ کے ارد گرد سے یہ چھٹ چکے ہوتے. یعنی نبی کی پرسنالٹی بتائی جا رہی ہے کہ آپ کی یہ کشش ہے کہ آپ کے ارد گرد جمع ہوئے میں اگر آپ سخت دل گندی زبان کے لوگ ہوتے تو آپ کے ارد گرد اتنی رونق نہ ہوتی. پھر اگلی روایت بخاری کی لکھیے، 273، انما بعثت لیتمم صالح الاخلاق. اوپر جو ترمذی کا لکھا تھا نا، اس میں صرف ایک لفظ کا فرق تھا، یہاں صالحہ ہے، ادھر فرق اور تھا کہ میں تو بھیجا ہی گیا ہوں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے. اور اگلی روایت نوٹ کیجئے گا، مسلم 6017، کان رسول اللہ، تھے رسول اللہ، احسن الناس خلقا، لوگوں میں سب سے اچھے اخلاق کے حامل. اور ابو داؤد کی روایت لکھیے، 4682، ابو ہریرہ سے، اکمل المومنین ایمانا احسنهم خلقا، مومنوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والے وہ ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھے ہوں گے. اور اگلی روایت سن کے تو ضرور ہی دل چاہے گا اعلی اخلاق پڑھنے سننے اور ان کو اپنانے کا. اور وہ کیا ہے؟ ترمذی 2003، کتاب البر والصلہ، ابو دردہ راوی ہیں، آپ نے فرمایا ما من شئ یودو فی المیزان اثقل من حسن الخلق، میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہ رکھی جائے گی، یعنی آپ کی نیکیوں کو بھاری کرنے والی نیکی. وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الْخُلُقِ لَيَبْلُغُ بِهِ دَرَجَتَ صَاحِبِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ، کیونکہ اچھے اخلاق والا شخص روزے دار اور نماز پڑھنے والے کا درجہ پا لیتا ہے. دیکھیے، ایک تو راتوں کی باتیں اور دن کے روزے نفل میں، اور دوسری طرف اچھا اخلاق، تو پھر ضرورت ہے نا کہ اچھے اخلاق کو صحیح طرح سے سمجھیں. اور اگلی روایت بھی نوٹ کیجئے، ترمذی 2684، خصلتان لا تجتمعان فی منافق، خصلتان لا تجتمعان فی منافق، دو خصلتیں ایسی ہیں جو منافق میں جمع نہیں ہو سکتی. کون سی؟ حسن الصمت ولا فقہ فی الدین. مجھے اس حدیث سے ڈر بھی بڑا لگتا ہے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو جاؤں گی. کون سی دو خصلتیں؟ نمبر ایک، اچھا چال چلن، کریکٹر اچھا نہیں ہوتا منافق کا، اور دین کی سمجھ، تفقہ فی الدین نہیں لیتا. یہ ابو ہریرہ کی روایت ہے، تو اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی منافق ہو، دل نہیں لگتا منافق کا دین کے اندر، کیونکہ اس کے اندر تبدیلیاں کرنا لازمی ہوتا ہے اپنے اندر. پھر اگلی روایت ہے ترمذی 1987، ابی ذر سے، اتق اللہ حیث ما کنتا، اللہ سے ڈرتے رہو جہاں بھی تم ہو. وَأَتْبِ سَيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، اور برائی کے پیچھے نیکی کرو. کبھی برائی ہو جائے نا، فوراً نیکی کر دو. کیوں؟ تَمْحُهَا، کیونکہ نیکی برائی کو مٹا دے گی. وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقِ حَسَن، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ. تو گویا کہ پھر اچھا اخلاق آپ کے میرے لیے لازم ہے. دعا کیجیے اپنے لیے دل کی گہرائی سے کہ اللہ آپ کو مجھے بااخلاق کر دے، اور ہمارا اخلاق وہ اخلاق ہو کہ جو حقیقت میں مطلوب ہے، بازاری، ٹریڈیشنل، ثقافتی، روایتی اخلاق نہ ہو، اور اخلاق کے نام پہ بے پرد نہ ہو جائیں، اخلاق کے نام پہ گناہگار نہ ہو جائیں، اور اخلاق کے نام پہ ہم اللہ کی حدوں کو توڑنے والے نہ بن جائیں. بلیو می، میں دل سے بول رہی ہوں کہ آج ہمارے ہاں اخلاق کا کانسیپٹ اتنا مس کانسیپٹ اس کا پیش کیا گیا کہ لوگ ہر حد کو توڑ کر کہتے ہیں فلاں بھائی بڑے با اخلاق ہیں، گھنٹوں بات کرتے ہیں مجھ سے اور اکیلے میں بات کرتے ہیں، اور وہ ہے، اور بھابھی تو اتنی اچھی ہیں کہ بھائی گھر ہو نہ ہو تو وہ پھر بھی ہمیں چائے بڑی مزے کی پلاتی ہیں. میں صرف مثال دے رہی ہوں، چائے پلانا کوئی بری بات نہیں ہے، اس کو کوئی نیگیٹو نہ لے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کی حدیں بھی اسی مالک نے دی ہیں. تو انشاءاللہ ہم اخلاق میں جو میری نظر میں سب سے اہم تھا اس کو ترتیب لے رہی ہوں، حالانکہ کتابوں میں آپ کو بہت ساری مختلف چیزیں ملیں گی، بٹ مجھے لگتا ہے جس چیز میں جو روٹ ہے، جس کو آپ کہہ لیجئے کہ آپ کے میرے لیے بنیاد کا درجہ بنتی ہیں، وہ صبر ہے. لیکن پہلے آپ بولیں، آپ کچھ کیا لگا ابھی جتنا کچھ سنا ہے اس کو سن کر، اس موضوع کے بارے میں آپ کا دل کیا کہہ رہا ہے؟ جی آپ بولیے. ٹھیک ہے جی وحیدہ. گڈ، شاباش، بہت اچھی بات انہوں نے کہی کہ جو ابھی تک ہے وہ اندر ہے، اس سے کسی کو کیا لگے؟ کس کو پتا آپ کو کتنا ترجمہ یاد ہے، کتنی گرامر یاد ہے، کتنی حدیث یاد ہے، لیکن آپ بیہیو کیا کرتے ہیں یہ لوگوں کو پتا چلے گا. جی آپ شائستہ.
ہمارا اندر اور باہر کا ایک ہونا بہت ضروری ہے، اسی سے آپ کا اخلاص بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کس اخلاص کے ساتھ.
جی، کال اور فیل کا تضاد نہیں ہوگا ہمارے اندر انشاءاللہ. جی ادھر سے اور آپ کچھ کہیں گے؟ ضروری ہے، بالکل صحیح، الحمدللہ. جی ایک منٹ، جی آپ پہلے شاہین. جی یعنی صرف دنیا دکھاوا نہ ہو بلکہ اپنی خوشی سے. جی آپ ایک منٹ، آپ جی.
اخلاق सिर्फ अपने रिश्तेदारों दोस्तों के लिए नहीं है बल्कि गैर मुस्लिमों और गैर लोगों के लिए भी है जिनको आप जानते भी नहीं है मगर उनको ऐसा पेश हुई है कि मतलब आपके खिलाफ बुलंद रहे।
जी मतलब अच्छा अखलाक जो है वो इस तरह के नफ़े नुकसान की हदों से ऊपर होता है। आप देखिए ना कि खूबसूरती जंगलों में भी है और खूबसूरती रास्तों में भी है। जंगल की कौन देखता है, कोई इंसान पहुंचता होगा ना, लेकिन अल्लाह ने अपना काम कर दिया। तो आपको मुझे हर हाल में अच्छा बिहेव करना है, चाहे कोई उस वक्त है कि नहीं है। जी पीछे से आप, जी आप। जी गुड, यानी इल्म हम अपने लिए लेते हैं और हिल्म हम दूसरों को देते हैं। ठीक है, चलिए आप ऐसा करें कि ब्रेक ले लीजिए, अभी थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे 10 मिनट के लिए। अभी लफ्ज़ ही नहीं, उसके बहुत सारे मनी आएंगे, ये आएगा टॉपिक। ठीक है जी, आप लोग 10 मिनट की ब्रेक लेकर 2-3 मिनट ऊपर कर लें अपनी खुशी से, और एक आधा मिनट आपसे हो ही जाना है, तो टोटल 15 हो गए। जाइए लाइट्स बंद करके और 15 मिनट के अंदर वापस आ जाइए, इंशाल्लाह फिर हम आगे चलेंगे।